हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामत के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दे रहे हैं। यदि आपको याद होगा तो अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे थे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, हे केशव, कि एक स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसका मन संतुलित है उसकी परिभाषा क्या है, उसके हाव भाव क्या हैं, लक्षण क्या हैं। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर। और कैसे समझ में आता है कि भगवान प्रसन्न है अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर, कि भगवान विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी गीता की टीका में वो लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के इस प्रश्न से प्रसन्न इसलिए क्योंकि ये नींव है भगवद गीता की, या भगवत साक्षात्कार की ये नींव है, कि जब तक हमारा मन संतुलित नहीं तब तक हम योग की जो परिकाष्ठा है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए विस्तार से भगवान कितने श्लोकों से सुना रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसे कहते हैं वो योगी जिसका मन संतुलित है, इक्विपॉइज्ड योगी। तो हमने दूसरा अध्याय का वो प्रसिद्ध श्लोक लिया था, अध्याय तो विषयान पुमसा, और उसके पश्चात इस श्लोक के पश्चात हमने हालांकि श्लोक का विश्लेषण कर कर ये देखा, विषय वस्तु पर जब कोई ध्यान केंद्रित करता है तो उस विषय वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति जागृत होती है, जिसके कारण कामनाएं, और कामनाएं जब पूरी होती हैं तो लोभ, और वो जब पूरी नहीं होती तो क्रोध। पार्ट टू, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने ये श्लोक लिया था। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो हमने इस श्लोक का भी विश्लेषण पिछले हफ्ते देखा कि जब व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता तो वो दूसरे मोड़ में चला जाता है, क्रोध अवस्था में। और जैसे ही रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से वो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है तो भगवान कहते हैं तत्पश्चात सम्मोह। मोह का अर्थ है इल्यूजन, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें। सम्मोह का अर्थ है कंप्लीट इल्यूजन, सम्यक रूप से मोहित। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, स्मृति भ्रमशात्, व्यक्ति स्मृति याददाश्त जिसे कहते हैं, मेमोरी लॉस, और उसके पश्चात बुद्धिनाश प्रणश्यति। इस भौतिक संसार को जो भवकूप कहा गया है इस श्लोक में, उस भवकूप में फिर वो गिर पड़ता है। तो पिछले हफ्ते हमने केवल क्रोध पर चर्चा की थी, एंगर मैनेजमेंट, और काफी सारे मुद्दे इसमें हमने डिस्कस किए, तो जस्ट उसका एक रिकैप ले लेते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, क्रोध कैसे करना है वो तो पता है हमें, तो वो फिर से डिस्कस नहीं करेंगे कि किन कारणों की वजह से कौन सा स्टाइल होता है हमारे क्रोध का, वो तो सब हम हमारा यूनिक फ्लेवर्स होते हैं सबके। तो हमने ये दो स्टेप्स लिए थे, कंट्रोल इट एंड कॉन्कर इट। तो स्टेप वन में हाउ टू कंट्रोल इट, पेशेंटली, प्राइवेटली, प्रूडेंटली, पावरफुली, पॉजिटिवली एंड पर्सनली। तो फिर हम इस पे ज्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो वापस से रिपीट हो जाएगा लास्ट वीक का लेक्चर। कॉन्कर इट, फर्स्ट रिकग्नाइज इट, रिपेंट एंड डोंट जस्ट स्टे देयर। कई लोग रिपेंटेंस में ही अटक जाते हैं। देन रिपोज इट इन कृष्णा सर्विस, ऑफ कोर्स वी हैव टू रेजिस्ट, एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंगर, वन इज पर्सन बेस्ड एंड वन इज इश्यू बेस्ड। सो व्हेनेवर द एंगर इज पर्सन बेस्ड देन ऑल द प्रॉब्लम्स दे स्टार्ट डेवलपिंग, जस्ट लाइक व्हाट कृष्णा इज मेंशनिंग ओवर हियर, what anger leads into sammoha and then smriti bhramsha, that is the person based anger, because Arjun himself had reposed his anger in the service of Krishna, that was just for the issue of establishing dharma and vanquishing adharma. To ab is shrinkhla mein bhagwan aage bata rahe hain, ध्यान से आगे चलते हुए ध्यातो विषयान पुंसा, वहां से शुरू हुआ था ये श्रृंखला, ये श्रृंखला वहां से शुरू हुई विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से, और हम पहुंचे हैं क्रोध के पश्चात सम्मोह। तो यदि सम्मोह को हमने अनुवादित किया है इल्यूजन, कितनी बार हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि हम किसी स्थिति से या किसी वस्तु से बहुत ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि हम अपने आप की पहचान भूल जाते हैं। इसलिए आप देखिए, कई बार लोग जब बहुत दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, ये दोनों स्थितियों में वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो दारू पी लेता है, तो दारू क्यों पी रहा है, क्योंकि दारू पीने से फिर वो जो भी उस समय का दुख है पूरा भूल जाता है। वो दारू एक ऐसा केमिकल है कि उसके अंदर वो एक, इसे सेडेटिव कहते हैं, सेडेट कर देता है, सब कुछ भूल जाना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो दुख है वो चले गए, अभी उसके सामने एक इल्यूजन का पर्दा आ गया है जिससे उसे वो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो जो मोह है, वो जो इल्यूजन है, कोई व्यक्ति यदि दारू पी रहा है तो उसके वजह से फिर उसका और बढ़ेगा आगे चलकर दूसरे दिन सुबह। तो ये उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बहुत सरदर्द उसका हो रहा था, अब डॉक्टर उसे अलग अलग उसके परीक्षण निरीक्षण कर रहा है और पूछ रहा है कि कब से हो रहा है, किस तरफ हो रहा है और क्या कारण हो सकता है इसका। ये सब पूछने के बाद डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि अभी इसको ठीक कैसे करूं, उस प्रकार का था डॉक्टर। तो उसने एक अलग तरीके का उपाय ढूंढा। तो उसने उसको पूछा कि अच्छा आपको जब ये सरदर्द शुरू हुआ तो आपके मन में क्या किस प्रकार के विचार आते, किस प्रकार के विचार, सरदर्द बस ये सर दुख रहा है यही विचार आ रहा, इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो देखिए डॉक्टर इसे ठीक कैसे करता है, वो जाता है अंदर एक हथौड़ा लेके आता है और उसे कहता है आप अपना पैर आगे कीजिए। तो बेचारा वो डरते डरते, अब डॉक्टर बोल रहा है तो विश्वास तो था उसे, तो पैर आगे किया, उसके पैर के अंगूठे पे जोर से हथौड़ा मारा। पूरा सूज गया उसका अंगूठा। तो अब डॉक्टर पूछता है अब आप के मन में क्या विचार आ रहा है, क्योंकि अभी मन डाइवर्ट हो गया यहां पे। तो उसका ये उपाय उसने ढूंढा कि आपको अगर सरदर्द हो रहा है तो उससे ज्यादा दर्द अगर मैं पैदा कर दूं तो ये भूल जाओगे, तो इसे कहते हैं मोह। तो जब कोई व्यक्ति मोह में एक और मोह की वस्तु की शरण लेता है तो उसी प्रकार से है कि उसका सरदर्द था, सरदर्द से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर ने एक और बड़ा घाव दे दिया उसे। तो इल्यूजन या सम्मोह के दो डेफिनेशन आज हम देखेंगे और ये प्योरली डिक्शनरी डेफिनेशन है। हालांकि देखिए हमारे शास्त्र में कैसे इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली वही दिया हुआ है। तो पहला डेफिनेशन अ डिसेप्टिव अपीयरेंस और इंप्रेशन, कि अपीयरेंस है लेकिन क्या है, डिसेप्टिव है। जैसे कि सिनेमा में दिखाते हैं आजकल कि वो जो हीरो है वो बिल्डिंग से सुपरमैन जो भी उड़ने लगा, और वो इस प्रकार से वो ग्राफिक्स होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो केवल वो एक इमेज बना है कंप्यूटर पर। लेकिन जब कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसे क्या लगता है, अरे उड़ रहा है और भी ऊपर उड़ रहा है, उड़ते उड़ते उसका भेष बदल गया है ना, ड्रेस बदल जाता है ना उसका उड़ते उड़ते, पहले पैंट शर्ट में फिर जैसे उड़ता है तो सुपरमैन के ड्रेस में आ जाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, न तो कोई उड़ रहा है न हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि वहां पर कोई सही में व्यक्ति है, ये बस हमारे सामने आंखों का खेल चल रहा है। हमारे आंखों, हमारी आंखें वही हैं, आंखें भ्रमित नहीं है, लेकिन ये जो मन उन आंखों से जो देख रहा है वो मन उसे देखता है कि हाँ ये कोई व्यक्ति उड़ रहा है। इसलिए ये सारे जो सिनेमा हुए उसके बाद फिर इनके कॉस्ट्यूम्स बिके, बहुत फेमस हुए ना सुपरमैन के कॉस्ट्यूम्स, स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम्स। तो उसमें फिर ये देखा गया कि कई लोग इतने भ्रमित अवस्था में उसको सत्य मान रहे थे कि उसको पहन के बिल्डिंग से, कई लोग ने प्रयास भी किया तो न तो रहा सुपर न रहा मैन, दोनों भी कुछ नहीं रहा। और फिर वो जो कॉस्ट्यूम्स वो लोग बेचते उस पर वो लोग ने लिखा वार्निंग, This costume doesn't ensure you to fly. तो देखिए कितना बड़ा भ्रम क्रिएट हो जाता है। तभी आपके सामने हम कुछ ऐसे इमेजेस रखेंगे जिसमें ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें समझ में आएगा कि जो बताया गया a deceptive appearance कि अपीयरेंस क्या है, हमारी आंखों को क्या दिख रहा है और सच्चाई क्या है। अब ये है बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लेकिन आपको क्या दिख रहा है अभी यहां पर? कि कोई व्यक्ति अपने लात से उसको ऐसे किया है, वो इतना सा है इसके सामने, उधर देखिए नीचे जो असली में जो व्यक्ति है ना कितने से दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ समथिंग। इससे ये समझ में आता है, कई बार जब हमारे कुछ सपने भी आते हैं, अभी यहां पर कोइंसिडेंस से वो वहां पर एक स्टैच्यू है और बॉल यहां पर इस बास्केट में जा रही, तो हमें तुरंत मन में क्या आता है कि वो फेंक रहा वहां से। तो वैसे ही हमारे स्वप्न में ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आते हैं कि हम अचानक उड़ने लगे, तो हमने कोई उड़ता हुआ कोई भी कोई पंछी देखा होगा, और फिर अपने आप को तो कितना ही देखते हम, तो उड़ता हुआ पंछी हमको अच्छा लगा, हम भी अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं, फिर उसका स्वप्न में कॉम्बिनेशन हुआ कि हम उड़ने लगे, और कई बार उल्टा भी हो जाता है कि अपना चेहरा और पंछी के दो पर। तो ये सब इसका डिस्कशन हम आगे भी करेंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे हमारे इतने सारे इंप्रेशंस और थॉट्स उसको बाहर ला लाकर उसके कॉम्बिनेशंस कराते रहता है। दो ही पैर हैं, ये मत समझिए कि ये कोई दूसरे प्लैनेट से आए जिनके तीन तीन पैर है, दो ही पैर हैं, क्षमा करना इसके लिए। अभी अभी नासिक के मिसल खा के आया है। तो दूसरा डेफिनेशन, तो पहला डेफिनेशन आपको समझ में आया, उसी प्रकार से हमें तो वो जो भी पिक्चर्स हमने देखे थोड़े वो मजाकिए लग रहे होंगे, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितने ऐसी स्थितियां आती हैं जो कि माया देवी प्रस्तुत करती हैं कि हाँ ये सत्य है, और इस प्रकार से प्रस्तुत करती है कि हमारी इंद्रियों को वो वस्तुएं सत्य के अलावा कुछ लगती ही नहीं। तो वो एक डेफिनेशन सम्मोह का बताया गया। दूसरा डेफिनेशन अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनको, एक है हम इंद्रियों से कुछ देखते हैं, जो हमने अभी देखा वो केवल हमारी इंद्रियां कुछ देखी और हमें उस प्रकार से वो प्रतीत हुआ, लेकिन कई होता है कि हमारी धारणाएं, सम्मोह का ये भी अर्थ होता है कि हमारी धारणाओं के ऊपर उनका कब्जा हो जाता, सम्मोहन का कब्जा हमारे धारणाओं के ऊपर हो जाता है, कि एक सेट धारणा हमारी होती है कि हम इसी प्रकार से सोचते हैं, हम इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार के हमारे दृष्टिकोण हैं, और वो भी माया देवी सम्मोहित कर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो हाल ही में एक मुझे आर्टिकल भेजा गया था एक हमारे भक्त ने, ये है एक बहुत फेमस मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड, शायद आपने सुना हो, तो उनका एक मैजिकल प्रेजेंटेशन है यहां पर जो कि सम्मोह, वो लोग करते क्या है मैजिशियंस, सम्मोह उत्पन्न करते, तो ये जो दूसरा डेफिनेशन है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं उसके द्वारा, तो आपके सामने आज एक छोटा सा मैजिक शो है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसे. यू कैन सी सिक्स डिफरेंट कार्ड्स. थिंक ऑन वन, जस्ट थिंक ऑन इट, डू नॉट टच इट, एनीवेज यू कांट, डू नॉट क्लिक ऑन इट. और ये डेविड कॉपरफील्ड बोल रहा है, आई विल फाइंड द कार्ड ऑन योर माइंड. सोच लिया आप लोगों ने? हाँ, वापस सोच लिया? नाउ लुक स्ट्रेट इन टू हिज आईज एंड थिंक ऑन योर कार्ड. याद है ना? भूल रहे तो नहीं? स्मृति भ्रमशात नहीं हुआ ना अभी? सबको याद है क्या सोचा था आपने? तो ये कहते हैं, आई डोंट नो यू, आई कुड नॉट सी द कार्ड यू हैव चोजन, बट आई नो एग्जैक्टली द कार्ड दैट इज इन योर माइंड. आपका कार्ड गायब हुआ कि नहीं? हरी बोल. फिर से ट्राई करना, फिर से ट्राई करना. ठीक है, सेकेंड टाइम. सोच लिया? आगे जाएं? आगे बढ़े? आंखों में देखना बहुत जरूरी है, वो मैजिक है. ध्यान से देख लिए और अपना कार्ड याद कीजिए. ठीक है, फिर से. अरे बेवकूफ बना रहा है हमें. इसको कहते हैं इल्यूजन. ये सारे कार्ड बदल रहे हैं और हमको क्या लगता है कि मेरा, हम अपना ही कार्ड ढूंढते हैं. तो यहां पर ये जो दूसरा डेफिनेशन है कि हमारा एक सेट बिलीफ कि मैंने जो सोचा है, हम खाली उसको ढूंढते हैं, बाकी भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने सोचा है, मैंने सोचा है, मेरा कार्ड है इसलिए. तो जो भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध अवस्था में रहता है तो वो इस प्रकार से सम्मोहित हो जाता है कि उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, उसके लिए भी और अगले व्यक्ति के लिए भी क्या भला है क्या बुरा है, वो सम्मोहन का पर्दा उसके सामने आने के वजह से, द कर्टन ऑफ इल्यूजन व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, ही कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज इविल. दैट इज द पावर ऑफ एंगर व्हिच लीड्स इन टू इल्यूजन. तो नीति शास्त्र के अनुसार, नीति शास्त्र कहते हैं कि हम इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो कुछ बहुत ही क्लासिक इल्यूजन्स से हम घिरे रहते हैं. तो सबसे पहला क्लासिक इल्यूजन इस भौतिक संसार का है, मनी विल गिव मी ऑल हैप्पीनेस. कि ये न के न प्रकारेण सबसे बड़ा रुपया भैया. दूसरा इल्यूजन आजकल मेडिकल साइंस, इसको हमने थोड़ा नीति शास्त्र के श्लोक को आज की भाषा में ट्रांसलेट किया, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल सॉल्व ऑल ऑफ माय प्रॉब्लम्स. कि जितनी भी तकलीफें अभी मुझे हो रही हैं या होंगी आगे चलकर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, साइंटिस्ट जो हैं वो ही हमारे भगवान हैं आजकल. They know, they are figure out, they are working out, and they will do something to solve all my problems, whether physical or mental. There is only this one life. बस ये जो जीवन है, यही एकमेव जीवन है. और अंततः सबसे बड़ा illusion क्या है? मृत्यु. बहुत दूर है, इतनी दूर है कि मुझे दिखाई नहीं दे रही. तो नीति शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही प्रसिद्ध सम्मोहन बद्ध जीव के हैं. इस भौतिक संसार में। यदि आप लोगों के पास कुछ लेटेस्ट है तो ऐड कर देते, तो हम इसको यदि एक एक कर कर देखें तो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जिसका प्रचलन इन्होंने किया, तो अपने फिलॉसफी में, हालांकि उसको फिलॉसफी बोलते थे जो भी, तो उसमें उन्होंने पैसे को लिया कि कैसे यदि आपके पास पैसे आ जाएं, ये न के न प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रूक, इफ यू जस्ट हैव मनी देन इट इज स्वीटर देन हनी, इट इज हनी इज ऑल्सो बिटर इन फ्रंट ऑफ मनी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये मार्क्सिस्ट फिलॉसफी काफी पहले भी पढ़ा हूं, इस्कॉन में भी आने से पहले, तो उसमें मुझे याद है कार्ल मार्क्स की एक किताब, तो कार्ल मार्क्स वो कहते हैं, एज एन इंडिविजुअल इफ यू आर द अगलीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, अगलीएस्ट पर्सन, सबसे बदसूरत व्यक्ति हैं आप, तो इस संसार का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कोई खूबसूरत व्यक्ति दूसरे खूबसूरत व्यक्ति को आकर्षित करता है। ओनली वन ब्यूटिफुल पर्सन कैन अट्रैक्ट अदर ब्यूटिफुल पर्सन, दैट इज द लॉजिक जनरली। बट इफ यू हैव मनी इन बिटवीन दैट ब्यूटी, विच मीन्स दिस पर्सन इज अगलीएस्ट एंड दिस पर्सन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, बट इफ देर इज मनी इन बिटवीन, फिर क्या हो जाता है? द लॉजिक चेंजेस। सो कार्ल मार्क्स इज सेइंग दैट इवन इफ यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ अगलीनेस, बट इफ यू हैव मनी देन यू कैन बाय द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल ब्यूटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। So consequently, using that logic of beauty attracts beauty fails when money comes, which means are you beautiful or are you ugly? You are beautiful because the end is you are attracting beauty, whether you attract by your own beauty or your money attracts that beauty, you are attracting beauty, which means you are beautiful. So even if you are ugly, don't worry, मनी विल मेक यू ब्यूटिफुल। दूसरा लॉजिक उन्होंने लगाया, एज एन इंडिविजुअल यू माइट बी अ स्ट्यूपिड इलिटरेट इग्नोरामस फूल, अंगूठा छाप, बट इफ यू हैव मनी यू कैन एम्प्लॉय द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, दिस दैट अंडर यू। अभी कितने ऐसे हैं जो कंपनी के मालिक हैं और कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उनकी कंपनी में बड़े बड़े पीएचडी, डॉक्टरेट, ये वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। सो एज एन इंडिविजुअल यू माइट बी इलिटरेट, यू माइट नॉट बी सो एजुकेटेड, बट इफ यू हैव मनी यू कैन एम्प्लॉय द मोस्ट एजुकेटेड। जनरली क्या होता है कि कोई एजुकेटेड है तो वो दूसरे एजुकेटेड पर्सन को अट्रैक्ट करता, नहीं, मनी कैन अट्रैक्ट एजुकेशन एज वेल। सो कॉन्सिक्वेंटली आर यू इलिटरेट, कार्ल मार्क्स इज आस्किंग। द थर्ड लॉजिक, एज एन इंडिविजुअल यू माइट बी क्रिपल्ड, हैंडीकैप, बट इफ यू हैव मनी यू कैन एम्प्लॉय सम ऑफ द मोस्ट एबल बॉडीड मैन टू वर्क फॉर यू, सो कॉन्सिक्वेंटली आर यू क्रिपल्ड? तो बहुत से ऐसे लॉजिक लगाकर कार्ल मार्क्स वो कहते हैं, वट एवर इन परफेक्शंस यू माइट हैव, वट एवर डिस्क्रिपेंसीज यू माइट हैव, इफ यू हैव मनी यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, यू आर द मोस्ट एजुकेटेड, यू आर द मोस्ट फेमस, यू आर द मोस्ट पावरफुल, यू आर द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग, यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर, मनी इज स्वीटर देन हनी, सो बाय हुक और बाय क्रूक जस्ट बिकम वेल्दी। क्या बोलते हैं आप लोग, कैसी लगी फिलॉसफी? व्हाट से? कोई है हमारे प्रभु जी को कोई रिफ्यूट करे? मार्क्स प्रभु जी को व्हाट वुड यू से? ठीक है, इफ आई प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट आई प्रेजेंट मार्क्सिस्ट फिलोसफी, हाउ वुड यू रिफ्यूट मी? But how, you know, give me a logic. I gave the logic, you give me the logic. काल को खरीद नहीं सकते. क्यों? मैं डॉक्टर को पैसे दूं, उसका टाइम मैं ले सकता हूं ना. एक घंटा दो मेरा आपका. I can buy the doctor's time. जो बीत गया हम वापस नहीं ला सकते. बचपन के वो दिन, वो कागज की कश्ती. Yeah, good point. Chanakya Pandit says that even if you have millions and billions of crores of dollars or whatever, rupees, you cannot buy that one moment which has gone by. Okay, theek hai. Lekin abhi jo hai, aur future ke jo moments, uske liye to maine acha se arrangement kar liya hai na, mere bank balance aur paison ke through. Phir, what about that? Money can't buy happiness. There was another philosopher of his time, Desicritus, and he said that yes, your money can buy a bed, but cannot buy sleep. Money can buy food, but not appetite. है ना? बोलते हैं ना कि कितने लोग हैं जो पहले इतनी मेहनत करते हैं, अब पापी पेट का सवाल बोलते हैं ना, तो यहां वहां भाग रहे हैं पेट को भरने के लिए, और फिर जब इतने पैसे आ जाते हैं फिर भागते हैं उसी पेट को कम करने के लिए. सो ही सेड यस, यू कैन बाय अ बेड बट यू कांट बाय स्लीप. यू कैन बाय फूड, द बेस्ट क्वालिटी फूड, बट यू कांट बाय एपेटाइट. यू कैन बाय, यू नो, the best gadgets and amenities and luxuries and comforts and the biggest houses, but no peace inside. Can you go to the market, mereko 100 gram peace dena, peace. So herein, when Karl Marx is presenting that the first illusion that money can buy all happiness, definitely we all are going through. Even those who do not have money and those who have all the money, maybe look into the graph of their mental peace and happiness. So therefore, this is an illusion which has been created by the modern civilization. Walt Disney's example, medical science will solve all of my problems. क्या इनका example था? Walt Disney जब ये बीमार मृत्यु शैया पर लेटे हुए, तो इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया और बोला कि मैं तुमको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को कभी भी 5-10 साल बाद पुनर्जीवित करना. तो वो लोग ने इनके शरीर को रेफ्रिजरेशन में रखा. देखो, एक तो ये खुद इतने बड़े सम्मोह में, और जिसको बोला वो भी उतने बड़े सम्मोह में, कि तो रखा कि हम जब कोई ऐसा नुस्खा ढूंढ निकालेंगे तो इसको हम पुनर्जीवित करेंगे. तो इसके जो भी परिवार वाले थे वो लोग सब परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतना पैसा खर्चा हो रहा था इसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए. तो सब रेफ्रिजरेशन वगैरह बंद करके खत्म कर दिया. मरने के बाद वो कौन सा उसकी आत्मा दूसरे प्लैनेट से आके बोलेगी, अरे मेरे शरीर को तुम क्या कर रहे हो, तो खत्म गया. सो वॉल्ट डिज्नी, ही वॉज वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड ही वॉज इन दिस बिग इल्यूजन दैट ही विल बी रिजरेक्टेड. He'll be resurrected just like Jesus Christ or some magical scientist or medical professional will do that. So this was his illusion. Then Charvak Muni. Now he appears to be very traditional, authentic. And Charvak Muni presented, Ranam Kritva Ghritam Pibet Yavat Jivet Sukham Jivet Bhasmi Bhutasya Dehasya Kutah Puna Agaman Bhave. कि जब तक आप जी रहे हो ऐश करो मज्जा करो जब तक आप जी रहे क्योंकि मरना तो है। हाँ ये देखिए जितने भी ये सब फिलोसोफर्स और ये मुनि इत्यादि जो भी हुए ये इन्होंने इनमें से किसी ने भी ये नहीं नकारा कि मृत्यु नहीं आने वाली। हाँ मृत्यु आएगी तो ये बोलते हैं कि मृत्यु तो आने वाली है भस्मी भूतस्य देहस्य ये जो देह है ये भस्म में परिवर्तित होने वाला है आज नहीं तो कल होगा ही। तो ये कहते हैं कि ठीक है अगर आज होने वाला है तो अभी भोग लो। जैसे अमेरिका में एक बहुत फेमस टीवी सीरीज हुआ था जिसके अंदर एक बहुत बड़ा उद्योगपति वेरी वेल्दी मैन और उसमें ये बताया था कि उसको कैंसर डिटेक्ट होता है उसके शरीर में तो डॉक्टर उसको 6 महीने देते हैं। तो अब एक एक एपिसोड में ये बताया कि कैसे वो जाके एंजॉय कर रहा है कभी हवाई आइलैंड्स में कभी यहां वहां एंजॉय स्विट्जरलैंड यहां वहां एंजॉय कर रहा है। तो वो सीरियल इतना पॉपुलर हो गया कि सब लोग उससे प्रेरणा ले रहे थे कि देखो किसी को कैंसर भी डिटेक्ट हो गया है लेकिन कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका। हाँ वो कैसे वो अपने एंजॉयमेंट को नहीं छोड़ रहा। तो अब वो इतना पॉपुलर हो गया अमेरिका में ये टीवी सीरियल कि 6 महीने बाद अब स्टोरी के अनुसार मरना था ना उसे तो उस पब्लिक डिमांड पर नहीं 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 हम नहीं मरने देंगे इसको। तो इतना पब्लिक डिमांड हुआ तो फिर स्टोरी में ट्विस्ट आया कोई दूसरा स्पेशलिस्ट आ गया बीच में उसने बोला और 6 महीने आपके। तो वहां पर वो क्या दर्शा रहे थे कि जो चाणक्य पंडित बोलते हैं उसका ठीक उल्टा। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अभी यदि आपके मन में आध्यात्मिक साक्षात्कार का कोई विचार आया तो तुरंत उसे अपनी क्रिया में लाओ और इंद्रिय भोग का विचार आए तो उसको पोस्टपोन कि जीवन तो नित्य है। तो यहां उल्टा कि अगर अभी मृत्यु सामने आ रही तो चार्वाक मुनि कहते हैं कि तुरंत भोगते रहो भोगते रहो। तो फिर कोई पूछे कि भाई फिर तो कर्म लगेगा ना ये यहां पर ये जो सम्मोह नीति शास्त्र में प्रस्तुत किया है ये उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया है या उनके बारे में बताया गया है कि जो कहते हैं कि ये कर्म वर्म कुछ नहीं है बस आप जो कर रहे हो इसी जीवन में सब कुछ आपका मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो ठीक है अच्छा है जो मिल रहा है भोग लो नहीं मिला लेके भोग लो मरने से पहले जो भी कुछ करना 4 दिन की जिंदगी ऐश कर प्यारे बन सबसे न्यारे ऐश कर प्यारे। तो ये हैं हमारे चार्वाक मुनि। फिर एक मृत्यु का एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्सा हुआ अमेरिका में 1994 FBI के फाइल्स में ये व्यक्ति रिकॉर्डेड है। इनका नाम है मिस्टर रोनाल्ड ओपस यहां पे आप पढ़ रहे हो। तो 1994 में ये घटना हुई जैसे ये आप चित्र देख रहे हो ये घटना ये जो चित्र है उसी घटना से ये उन्हीं के कुछ उन्होंने चित्र ऐसे निकाले ग्राफिक्स करके। तो ये मिस्टर रोनाल्ड ओपस ये आत्महत्या करने के लिए एक 10वीं मंजिली की इमारत से कूदे। क्या करने के लिए? आत्महत्या करने के लिए। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि 8वें फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगाया गया था कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे तो उन्होंने सेफ्टी नेट लगाया, जैसे बिल्डिंगों में लगाते ना सेफ्टी नेट, तो इनको नहीं पता था कि सेफ्टी नेट लगाया। तो सेफ्टी नेट किस लिए लगाते हैं कि कोई अगर गलती से फिसल कर गिर भी जाए तो नेट में अटक जाएगा। तो यदि हम इनकी तकदीर देखें तो इन्होंने भी ऐसी बिल्डिंग चुनी जो इनको पता नहीं था कि आठवें माले पे ही सेफ्टी नेट है, तो ये कूद रहे हैं। तो अब तकदीर के अनुसार आप क्या कहोगे, क्या होगा इनका ये स्थिति में? अभी ये मान लीजिए कि ये नवे माले पे पहुंचे हैं, नीचे जा रहे हैं, और इसके नीचे आठवें माले पे सेफ्टी नेट, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे? हाँ, बचेंगे ना, लेकिन ये सेफ्टी नेट पे मरे हुए पाए गए। अब दसवें माले से कूदे, नवा माला, आठवें माले पे सेफ्टी नेट पे मरे हुए पाए गए, तो कैसे मरे ये? तो एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि गोली इनके माथे पर किसी ने मारी। तो गोली लगने से ये वहां पर सेफ्टी नेट पे मरे हुए पाए गए। समवन हैड शॉट इन हिज हेड। तो कितने अंतराल में दसवें माले से कूदे, नवा माला, आठवां माला, इन दो माले के बीच में किसी ने गोली मार दी? हाउ इज इट पॉसिबल? कितना समय लगता है गिरने में, उतने समय में किसी ने गोली मारी। सो द एफबीआई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर एंड देन दे फाउंड दैट एज मिस्टर रोनाल्ड ओपस वॉज इन मिड एयर फ्रॉम द 10th स्टोरी was going down from the 9th floor, there was an old man who shot a bullet, and it exactly coincided with Ronald Opus when he was reaching the 9th floor and that bullet hit his head and he was found dead on the safety net, although it was a safety net, but he was found dead. To ab wo jo budha vyakti, पुलिस उसके पास पहुंची जिसने 9th फ्लोर से गोली मारी थी, तो उसके पास पहुंची। तो अब ये दंपति वहां पर, पति पत्नी बूढ़े, तो उसने कहा कि देखो भाई, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, हां गोली ये बंदूक से निकली, लेकिन मुझे पता ही नहीं ये बंदूक कैसे चलाते हैं। तो पुलिस ने पूछा, तो फिर बंदूक क्यों रखी आपने, और आप बोल रहे हो कि गोली निकली और आपको पता नहीं कैसे चलाते हैं? बोला, हां मैंने कभी इस बंदूक में गोली भरी नहीं। बोला, क्यों रखी फिर बंदूक? बोले, वो थोड़ा प्राइवेट कारण है। वो प्राइवेट कारण ये था कि जब भी उनकी पत्नी के साथ झगड़ा होता तो ड्रावर से बंदूक निकालते और खाली बंदूक निकालते कि गोली उसे उड़ा दूंगा। तो ये उनकी आदत थी, दैट वॉज हिज लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट टू थ्रेटन हिज वाइफ यूजिंग एन एम्प्टी गन। तो अब प्रश्न ये है कि यदि इन्होंने आज तक कभी अपने बंदूक में गोली भरी नहीं, तो उस दिन जब ये अपनी पत्नी को धमकी दे रहे थे तो वो बंदूक में वो गोलियां किसने भरी? पता लगा कि उनके बेटे ने, और वो भी 4 महीने पहले भर के रखा था उसने। क्यों? क्योंकि वो बेटे की जो मां, मतलब ये बूढ़े व्यक्ति की पत्नी, उसने उसका पॉकेट मनी बंद कर दिया था। तो अब उसे इतना क्रोध आया हुआ था, क्रोधात भवति सम्मोहा, उसे इतना क्रोध आया हुआ था, लेकिन वो तो ये हरकत नहीं कर सकता, लेकिन उसे पता था कि मेरे पिताजी की ये आदत है, तो मैं खाली गोली भर के रख देता हूं। तो 4 महीने पहले उसने गोली भर के रखी, लेकिन 4 महीने से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, उनके माता पिता के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये परेशान होकर ये व्यक्ति उसी बिल्डिंग के टेरेस पे जाके कूद रहा था और बेटा यही था। 10 son of that old man and that old woman was none other than Mr. Ronald. तो देखिए क्या बोलते हैं उसको, तकदीर का कारनामा, that he had loaded that gun under the impression that my father will use it on my mother who had stopped my pocket money because it was not happening for the past 4 months. He was so frustrated that he wanted to commit suicide. He went up on the terrace about to jump. Actually, he jumped. But still, if that bullet was not shot, he would have still be saved because there was a safety net. देखो कहां कितने इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और अलग अलग लेयर्स हैं डेस्टिनी के, कि हाँ कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि मरेगा नहीं, मरेगा और कोई, ये नहीं सेफ्टी नेट की वजह से, लेकिन कूदा है तो हो सकता है मर भी जाए, लेकिन और किसी कारण की वजह से मरा। तो फिर एफबीआई ने सोचा कि अब ये सुइसाइड है या होमिसाइड है। सो फाइनली जब पता लगा कि वो गन लोड रोनाल्ड लोपस ने किया था, सो द फाइल्स वर क्लोज्ड, राइटिंग मिस्टर रोनाल्ड लोपस कमिटेड सुइसाइड। हरे कृष्णा। तो यदि कोई इस धारणा में है कि मृत्यु मेरी बहुत दूर है, या कोई इस धारणा में है कि मृत्यु बहुत निकट है, जैसे एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए वो रेलवे की पटरी पे लेट गया, लेकिन अपना इतना बड़ा टिफिन लेके आया, तो उसको पूछा टिफिन क्यों लेके आया, तो मरने वाला है, बोला अरे इंडियन रेलवेज है, पता नहीं कब आएगी। बोला उस 10-12 घंटा लेट होती है कई गाड़ियां, तो भूख के कारण ना मर जाऊं। तो ये संसार में कोई व्यक्ति किस स्थिति में कब, कितने सारे ऐसे हादसे होते हैं जैसे भूकंप इत्यादि। देख भूकंप में देखो, जैसे भुज में जो भूकंप हुआ था उसमें एक ऐसी घटना हुई थी कि एक महिला, उसे पता लग गया कि ये भूकंप का कंप है, तो वो अपने जो भी बिल्डिंग से नीचे उतरी और उसने अपने सामने पूरी बिल्डिंग नीचे गिरते हुए, नहीं गिरी नहीं, हाँ एक्चुअली बिल्डिंग गिरी नहीं, बिल्डिंग हिल रही थी, तो वो जिस बिल्डिंग से उतरी उसके घर से, वो बिल्डिंग केवल हिल रही थी, लेकिन ये बाहर आकर उसने सोचा मैं अपने आप को बचा ली हूं, लेकिन पीछे वाली बिल्डिंग इसके ऊपर गिर गई। तो यदि वो वहां पर रहती तो कुछ नहीं होता था शायद। सो दिस इज हाउ व्हेन समबडी इज इन दिस इल्यूजन, हिरण्यकश्यपु वाज इन द बिगेस्ट इल्यूजन दैट आई एम इमॉर्टल। तो नीति में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जहां पर गिद्ध, वल्चर, बहुत फेमस है वल्चर्स आए, ईगल कि आंख से भी ज्यादा तीक्ष्ण शार्प किसकी आंख होती है, वल्चर की। तो नीति के इस शास्त्र में, इस श्लोक में, नीति शास्त्र के श्लोक में कहा गया है, योधिकात योजन शतात पश्यति हामिशम खग, खग कहा गया है वल्चर को, योधिकात योजन शतात, शत का अर्थ होता है 100, योजन शत की शत योजन, एक योजन 8 मील का होता है, तो शत योजन कितना हो गया, 800। तो 800 मील ऊपर से एक गिद्ध की नजर इतनी तीक्ष्ण होती है कि 800 मील ऊपर गिद्ध उड़ रहा है, और आमिशम कोई मरा हुआ जानवर प्राणी को उतनी ऊपर से देख लेता है, ठीक है, उसकी नजर उतनी ऊपर से उसको दिखाई दे देता है कि यहां पे कोई मरा हुआ प्राणी है 800 मील ऊपर से। योधिकात योजन शतात पश्यति हामिशम खग स एव प्राप्ता कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। आगे की दो लाइन में श्लोक में कहा गया है कि यही गिद्ध के सामने मृत्यु इतनी निकट आती है उसको दिखाई नहीं देता। When death comes in front of this vulture, although this vulture has such sharp vision that it can spot a dead animal right 800 miles above from the sky, but when death comes right in front of the eyes of this vulture, cannot see it. Pashabandham na pashyati sa eva prapta kalastu khaga. To yahan par ये बताया गया है कि जो सम्मोह है ये हम मनुष्यों को विशेष रूप से ऐसी स्थिति में डाल देता है कि जैसे हमने देखा कि वो मैजिक देखा ना, उसमें हम एकदम एनग्रॉस्ड होगा, अरे मेरा पत्ता कहाँ गया मेरा पत्ता, इतने से स्क्रीन में से कहाँ चला गया। दैट्स इल्यूजन। तो सोचिए कि कौन है ये डेविड कॉपरफील्ड। अगर ये डेविड कॉपरफील्ड जो स्वयं सम्मोह में है, किसके, भगवान की बहिरंगा शक्ति के, तो सोचिए भगवान की बहिरंगा शक्ति में कितनी शक्ति है सम्मोहित करने की, कि वो हमें सम्मोहित कर रहा है। तो इसलिए नीति में ये जो क्लासिक इल्यूजन्स बताए गए हैं, अंततः वो जो मृत्यु का इल्यूजन है वो इतना स्ट्रांग है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी जब पूछा गया, युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। जैसे बचपन में हमको हमारी इंग्लिश टीचर ने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक राजा था जो बहुत सक्सेसफुल, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल किंग। So one day, after retiring from his kingly duties, he was in his inner chambers and he was looking out. Bahar dekh raha tha. He was looking out into his kingdom. And he was feeling so elated and proud about his kingship. And he composed a poem. He started writing down a poem about his own kingship, successful kingship. So he said, what a king I am with queens of unrivaled beauty and soft-spoken servants. What a king I am with men of unparalleled sincerity and law-abiding citizens. What a king I am with armies of trumpeting elephants and wind-paced horses. तो ऐसे अपने अपनी रानियों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में, अपने सेना के बारे में वो ये poem को, लेकिन क्या हुआ कि last line compose नहीं कर सका। He got stuck in composing the last line. So again he repeated the first three lines. Again. And for hours and hours and hours he was doing that. And past midnight, a thief entered into his inner chamber. Why? To steal something. So the king was now on his bed, but he was repeating, what a king I am with queens of unrivaled beauty and soft-spoken servants. Men of unparalleled sincerity and law-abiding citizens with armies of trumpeting elephants and wind-paced horses. But then he got stuck in composing the fourth line. He was tossing and turning, not able to compose the fourth line, so disturbed. And the thief who had just entered realized that the king is still awake. He went in underneath the bed, ducked himself. And from underneath the bed he was looking at the royal paraphernalia of the king. The regalia of the king, the royal robes, the crown, the bejeweled ornaments and everything. And the thief was saying, only if this king goes to sleep, everything will become mine today. And that will be the perfection of my thievery and robbery. But the king was going on and on and on. Those silly three lines. What a king I am, with queens of unrivaled beauty, soft-spoken servants. And now the thief was becoming restless. Hey, yaar, subah kar lena. Raat ke 2 baje, soja. But the king was hellbent. Fourth line. Now, it was practically the time of dawn. And the thief was waiting. Look at the patience of the thief. He was waiting underneath the bed. And look at the determination of the king. He was repeating the first three lines. Fourth line nahi ho raha. Hota na obsessive compulsive log hote hain. Choti si cheez kuch nahi hua to chhodte nahi usko. Ye screw kyu nahi band ho raha hai? Are tho gaya nahi pura andar nahi ja raha. Pura. To aise fourth line. So he was like that. So now the thief, he was so frustrated and he said, next time this king begins with that silly poem, I cannot tolerate it anymore. Whatever may happen. But this poem of this king is becoming more intolerable than even any imprisonment if I might get. As soon as the thief thought like that, the king began. What a king I am with queens of unrivaled beauty and soft-spoken servants. What a king I am with men of unparalleled sincerity and law-abiding citizens. What a king I am with armies of trumpeting elephants and wind-paced horses. And then the king again got stuck and the thief spoke the fourth line. From underneath the bed he said, and all that I have will turn to nothing when this eye closes tonight. Now the king was impressed. Shockingly impressed. That it was the perfect line, but who spoke it? I didn't speak it. Pulled out the thief. Now the thief was shivering. Oh my God. I did this blunder. But then he saw that the king was, you know, appreciating. Oh, that was a perfect line. Oh, Raja ne pucha hi nahi, tum kaun hai, kaise aaya andar, kya kar raha hai? Kaise, what was that fourth line? What was the purport of that fourth line? Meaning of that fourth line? Repeated that again. Abhi, aisa hota nahi ki aapne kuch galti kar di, lekin agle vyakti ko pata hi nahi laga aapne galti ki. Lekin aapke galti ke upar wo aap ka gunagan kar raha hai. To aap phir, acha, so, you know, he started. You know, the thief, now he became philosophical. And the thief said, see, I'll tell you the meaning of the fourth line. Sit down. So you were speaking about your successful kingship. What a king I am. With queens of unrivaled beauty and soft-spoken servants, men of unparalleled sincerity, law-abiding citizens, armies, of all of that. And the fourth line which I uttered, and all that you have will turn to nothing when your eye closes at the time of your death. Of course, the thief didn't mean that when he said. What he meant was, that tonight when you go to sleep and your eye closes, I'll steal all of this which you are speaking about. Your kingship. So when our English teacher, when she narrated this story, so yes, it was all fun when we were listening up until this point of time when, you know, the seriousness of the moral was being spoken. Yes, we are also like that king. We also have our own armies. We also have our own soft-spoken servants and, you know, the subjects and positions and possessions. These two things. Positions and possessions. But we also, like that king, failed to compose the fourth line. At the time of death, when my eye closes, all of this will turn to nothing. Or, and how much time it takes? Kitna samay lagta hai band hone ke liye? Just few moments for the eye to close at the time of death. And all that we have amassed all through our life will turn to nothing. In fact, somebody else will take. Forget about nothing. How much painful will be that? Sometimes we see. Like there was a cloth merchant. And at the time of death, he was doing like this. Bol nahi pa raha hai, aise aise kar raha hai. To log puche, rishtedar aaye puche, kya kar raha hai? Bole nahi, ye pure jeevan bhar iski aadat yahi thi. Kitna meter? Ye meter? Do meter? Teen meter? To marte samay bhi. Kitna meter chahiye? Acha, ded meter? Acha, do meter? Teen meter? To aise aise kar raha hai, aise aise kar raha hai. And then after a while, kuch samay baad, mrityu shayya par hai, to uske parivar wale aaye, to poochta hai, Sanju kahan hai Sanju? To Sanju aa gaya, Sanju. Acha, Birju kahan hai Birju? To Birju aa gaya. Acha, Sanju hai Birju? Are dukaan pe kaun hai? So the illusion which has been created, and most of the time the material energy, it creates illusion for us in such a way that we become the upholder of that illusion and we solidify it more. Agar unhone keval sabji kaat ke rakhi hai to hum pura tadka laga ke pura uska meal banate hai us illusion ka. So when Niti Shastra talks about all this, the classic illusions, so why we have only taken today Krodhat Bhavati Sammoha, because it was one of the most important aspects, because Arjun had gone into Sammoha. So today's verse will continue in part 3 as well. ये भी मेरे को हाल ही में किसी ने भेजा था. Our life has been determined in 5 bottles. देखो शुरू कहां से होता है. So it's just, you know, again, if we sum up our life, you know, how people, they think philosophically also. I don't think somebody who sent me this, I had read the Niti Shastras and the different kinds of illusions. But still see, this is the fact of life. We begin with this bottle and end with that bottle. And the bottles in between. Don't forget that. Sometimes some of the bottles in between increases and makes that end bottle come faster. Jaldi aa jata hai wo. So this is again just a recap, the breakup, and we have gone to from Dhyayato Vishyan Pumsam, reached to Krodha and to Sammoha, and then in our part 3 of this famous classic verse, we'll be discussing that what happens when the living entity from Sammoha gets into Smriti Bhramshat, which is called memory loss. So that will be the topic of our discussion for next Wednesday, part 3 of the same verse. Thank you all very much. Hare Krishna.